नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले पर दुख और पीड़ा व्यक्त की, इसे कश्मीरियत पर हमला बताया। भारत ने गलत सूचना फैलाने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। पहलगाम आतंकी हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई। भारत और फ्रांस 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम जयपुर में गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। कला, समाज सेवा, जनहित कार्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेलकूद और लोक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ये सम्मान दिए जाते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की, जो करीब 40 मिनट तक चली। बैठक पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद की कार्रवाई के मद्देनजर हुई। यह बैठक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान द्वारा रक्षा मंत्री को महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दिए जाने के एक दिन बाद हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आज पहलगाम में हुई बर्बर आतंकी हमले पर दुख और पीड़ा व्यक्त की, जिसमें 26 लोग मारे गए और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और प्रगति में बाधा डालने वाले नापाक इरादों को हराने के लिए दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसकी शुरूआत पिछले सप्ताह इसी त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के 2 मिनट का मौन रखने के साथ हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सदन 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है। प्रस्ताव का हवाला देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, आतंक के ऐसे कृत्य कश्मीरियत को लोकाचार, हमारे संविधान के निहित मूल्यों और एकता, शांति और सद्भावना की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर और हमारे देश की विशेषता रही है। विधानसभा में त्रासदी के एक दिन बाद सुरक्षा और कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केन्द्र द्वारा घोषित राजनयिक उपायों का भी समर्थन किया गया। भारत ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में भारत के खिलाफ गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, सीमा समा टीवी, आरए न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। इन यूट्यूब चैनलों पर भारत उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 2 सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई है और भारत की बीबीसी प्रमुख को देश की तीव्र भावनाओं से अवगत कराया गया है। आतंकवादी को उग्रवादी कहने के लिए बीबीसी को एक औपचारिक पत्र भेजा गया है। विदेश मंत्रालय बीबीसी की रिपोर्टिंग की निगरानी करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को वय वंदना कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा है कि इस योजना को न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में एक स्वास्थ्य मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कैशलेस सुविधा इस योजना की एक बड़ी विशेषता है, जो किसी अन्य स्वास्थ्य योजना में उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार आज से इस योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देते हुए CHIR हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT पालमपुर ने वैज्ञानिकों ने दिवांग वैली में एक नई ऑर्किड प्रजाति हेमिपीलिया हिमालयनसिस को की खोज की है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ऑर्किड प्रजाति राज्य के अल्पाइन घास के मैदानों में 4000 मीटर की ऊंचाई पर पनप सकती है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई ऑर्किड प्रजाति हेमिपीलिया हिमालयनसिस की खोज करने और CSIR IHBT पालमपुर के वैज्ञानिकों की टीम की सराहना की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि यह खोज न केवल राज्य की अविश्वसनीय जैव विविधता को समृद्ध करती है बल्कि निरंतर अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर और मंदसौर में शराब ठेकेदारों के 11 परिसरों पर तलाशी ले रहा है। ये जांच एक FIR के बाद की गई है जिसमें 2015 और 2018 के बीच ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेराफेरी के कारण सरकारी राजस्व को 49 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का आरोप लगाया गया। चालान से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की जांच से पता चलता है कि ठेकेदारों ने छोटी संख्याओं का उपयोग करके शब्दों में रुपए अनुभाग को खाली छोड़कर बाद में अधिक राशि भरकर उसे संशोधित प्रतिक्रिया गोदामों और आबकारी कार्यालयों में जमा करने राशि में हेराफेरी की है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम के निजी कागजात संग्रह को अपने कब्जे में ले लिया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा श्री कलाम के परिवार द्वारा कागजात सौंपे जाने के लिए एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पूर्व राष्ट्रपतियों से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह एकत्र करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा है कि संगठन के पास पहले से ही डॉ राजेंद्र प्रसाद और वीवी गिरी जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों से संबंधित दस्तावेज मौजूद है। पंजाब पुलिस ने राज्य में सभी नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए 31 मई की समय सीमा तय की है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को 1 मार्च से शुरू किए गए युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत नशा मुक्त राज्य बनाने की समय सीमा को पूरा करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत आज फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान की खरीद के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत हस्ताक्षर समारोह में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 26 राफेल मरीन विमानों में से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर होंगे और इन्हें भारतीय नौसेना की जरूरत के हिसाब से डिजाइन और तैयार किया जाएगा। राफेल मरीन विमानों में शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इन लड़ाकू विमानों को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमानवाहक पोतों में तैनात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के नियमन की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताते हुए कहा है कि इस मुद्दे में गंभीर चिंताएं पैदा की है। जवाब में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि कुछ और नियमन पर विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने कहा है कि जनहित याचिका में महत्वपूर्ण चिंता का विषय उठाया है और केंद्र सरकार और OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स Amazon Prime, Alt बालाजी Alu Digital, मूवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X Corp, गूगल Meta Inc. और Apple को नोटिस जारी किया है। मौसम विभाग ने आज असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा केरल और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ RK जेनामणि ने कहा है कि राजस्थान पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और IPL क्रिकेट में मेजबान राजस्थान रॉयल्स का सामना आज शाम जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से होगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।